स्कंद सात अध्याय पांच श्लोक नंबर 23। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। आता है आता है पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यात्म निवेदनम। शब्दार्थ श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, विष्णु भगवान विष्णु का अन्य किसी का नहीं, स्मरणम श्रवण करना, पाद सेवनम चरण की सेवा करना, अर्चनम पूजा करना, षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार की सामग्रियों द्वारा, वंदनम स्तुति करना, दास्यम दास बनना, सख्यम सर्वश्रेष्ठ मित्र बनना, आत्मनिवेदनम अपने पास की प्रत्येक वस्तु को समर्पित करना। हम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामजं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखनिधं च। नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने। नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। पंचाकल्प तरुवच्च कृपा सिंधु वैवच्च पतितानं पावनेव वैष्णवेव नमो नमः नमो महाबुद्धाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमो पञ्चतत्मातकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदितो गौड़दय पुष्पवंतौ चित्र संदतमानुदो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन भागवत कक्ष में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और नवधा भक्ति का जो लक्षण है उसका बारे में आप लोग बहुत वरिष्ठ भक्त से इसको श्रवण करते आ रहे हैं। इसका व्याख्या करना मेरा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन पुजारी विभाग में सभा करने के नाते धर्मात्मा प्रभु बोले कि आप अर्चन के बारे में कुछ बताने के लिए। तो प्रहलाद महाराज को जब गुरुकुल में भेज दिया गया था तो उन्होंने गुरुकुल में जो भी अध्ययन किए, जब उनको आपस राजधानी में राजसभा में हिरण्यकश्यप ने पूछे थे कि बेटा तुम इतना दिन अध्ययन किया, क्या अध्ययन किया हमको हो बताओ, तो उन्होंने बहुत सारे बात बताए, लेकिन मुख्यतः श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख आत्म निवेदन ये नवदा भक्ति का बारे में उल्लेख किया। तो आज जो हम श्रवण करेंगे अर्चनम का बारे में, ये जो 64 अंग है उसमें ये अर्चन भी आते हैं, लेकिन बहुत शास्त्र में बहुत प्रकार का उदाहरण है। विष्णु रहस्य में एवं भक्ति रसामृत सिंधु में खास कर हमारे भागवतम में एकादश स्कंद में भी कुछ उसका दिग्दर्शन हुआ है और उसको महाजन लोग व आचार्य लोग उसका पुष्टि करते हैं कि 64 अंग है, तो विधि मार्ग में हमको पालन करना चाहिए और उसका जो अपराध है बराह पुराण में कुछ स्कंद पुराण में ये अर्चन करने वालों को ये अपराध से बचने के लिए ये सतर्क दिया गया है। अरे अर्चन का जो अंग को प्रथम महाराज ने बहुत कड़े से पालन किए थे, जो भागवत का जो प्रसंग चल रहा था अब सुने हैं, लेकिन प्रथम महाराज ऐसे सत्ता वे सवतार है फिर भी उन्होंने हमारे जैसे बद्ध जीव को उन्होंने ये दिग्दर्शन नहीं दिए, उन्हें निष्ठा सहकार उन्हें पालन किए और अंतिम में भगवान का धाम भगवत धाम को लौट गए, उसका जीवनी में इसको सुना जाता है। लेकिन हमारे जो अर्चन का बारे में वो शास्त्र तो वो द्रुत है, लेकिन हर मंदिर में अलग अलग प्रकार से उसका आराधन करते हैं। जैसे कि दूसरा मंदिर में अर्चन करते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में हमारे मंदिर में उसका पाठ किया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रज का भाव का प्राधान्यता दिया जाता है इसीलिए। लेकिन जब पंचांग पूजा व षोडशोपचार पूजा का जो विधि बतला गया है अर्चन पद्धति में, जो कि हमारे जीबी से उसको प्रणयन किए हैं, उसका बाद उससे हमारे कोई पुजारी मिलके, हमारे एक पुजारी थे भद्राचार्य प्रभु बोल के, उन्होंने भद्र कृष्णा और पुजारी मिलके, हम सब मिलके वो के बंगला में उसको आरोप प्रस्तुत किए थे। उसका बाद उसको पूज्यपाद राधारमण महाराज ने उसको छोटा आकार में, बाबा हमारे जो मंदिर में पूजा होता है और उसी हिसाब से उन्होंने उसको बंगला से हिंदी में अनुवाद किए हैं। जिन लोग अर्चन पद्धति का हिसाब से पूजा करना चाहते हैं, एक जो पुस्तक होना चाहिए सभी का पास में, हमारे स्टॉल में मिलता है। तो पुजारी लोग को जो पूजा करते हैं ये अर्चन का, तो उसका पांच अंग होता है। पांच अंग में पहले होता अभिगमन, उसका बाद उपादान है, जोग है, इज्जा एवं श्रद्धा है। अभिगमन का मतलब है कि सुबह जब हम 3:30 बजे व 4 बजे जाग जाते हैं तब से चालू होता है। तो प्रातः जब हम जाग जाते हैं तो पहले भगवान को, पहले नहीं गुरु महाराज को पहले प्रणाम करना चाहिए। ये तो संध्या समय भी गुरु महाराज एवं भगवान को प्रणाम करके एवं भगवान का लीला तो श्रवण के बाद कीर्तन अध्ययन करके आर सहन करना चाहिए। ये हमारे प्रभुपाद जी का आर तात्पर्य में कई जगह में उल्लेख किया है, क्योंकि सहन जो हमें इसे शरीर सुख के लिए नहीं, ये कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इसीलिए एक बार पूज्यपाद राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि हम कई बार देखा जाता है कि हमारे भक्त लोग भी और बाहर का लोग में भी क्या फर्क है, उन लोग भी ऐसे लंगधन विश्राम करते सहन करते हैं और भक्त लोग गामछा पहन के सोते हैं। इसीलिए महाराज बता रहे थे कि कम से कम धोती और बढ़िया से सफा सुथरा भाव के सहन करना चाहिए। और भी रीति रिवाज का अनुसार जिन लोग शुद्धता को बजाय नहीं रखते हैं, तो उन लोगों को जो भूत प्रेत व दूसरा जो कुष्मांड बगरा है उन लोग को अपेस हो जाता है। तो उसमें जो अर्चन पद्धति में है कि पहले का जो है उसमें पहले गुरु का प्रणाम करना चाहिए एवं स्मरण करना चाहिए, उनका प्रणाम मंत्र ही बोलना चाहिए। प्रातः सिमन नवदीपे दिनेत्र दिभुज गुरु बराभय पद शांतम तत्समय श्रवण, ये प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए एवं गुरु को स्मरण करना चाहिए। आ गुरु महाराज कहाँ पर विराजमान है कि अर्चन पद्धति के अनुसार सिमन नवदीप में माँ वृंदावन में भगवान का नित्य लीला में उन्होंने सेवा में निमिष्ट है। जैसे हमारे अष्टकांड लीला का बारे में प्रभुपाद जी ने ऐसे खुला खुली भाव में उन्होंने उल्लेख नहीं किए, लेकिन अष्टकांड लीला का अनुसार ही सभी सेवा उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो पहले हम गुरु महाराज को स्मरण करके उसका बाद भगवान का, जैसे राधा कृष्ण का, अपना इष्ट देव का अनुसार जगन्नाथ जी का, रामचंद्र भगवान जी का एवं राधा राज बिहारी का, गोकुलानंद का, शालिग्राम का, ये सब अपना इष्ट देव को स्मरण करके फिर दंत धावन करते हुए फिर हम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर हमको पवित्र वस्त्र व धोला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, कि अपराध जो अर्चन पद्धति में वर्णन है कि बिना धोया हुआ कपड़ पहनना ये भी सेवा अपराध है। वस्त्र पहनने का बाद, परिधान करने का बाद हमको द्वादश अंग में तिलक रचना करना चाहिए। भगवान का जो शिव श्री मंदिर है एवं उनका जो मंत्र है उसको भी उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करने बाद ऐसे एक ही तिलक सेवा करने का समय आसन में बैठकर करना चाहिए एवं तिलक समापन होने का बाद आचमन करना चाहिए। जो नव दीक्षित है व हरिनाम दीक्षित है वो साधारण आचमन करेंगे एवं जिन लोग ब्राह्मण दीक्षित है वो विशेष आचमन का उपयोग करें, खास करके जिन लोग पुजारी मंदिर में जिन लोग प्रवेश करते हैं अभिषेक का टाइम में, ये आसन पद्धति में विशेष आचमन का भी इसमें प्रस्तुत है, उसको याद भी करना चाहिए। एवं और भी ऋग्वेद का जो मंत्र है, अंतत विष्णु परम पदम सदा पसंति सुरय देवी व चखुरादतम, इस श्लोक को उच्चारण करना चाहिए। उसका बाद उपादान, उपादान जो है भगवान के लिए जो पूजा में भगवान को अर्पण करने के लिए एवं पूजा करने के लिए विभिन्न सामग्री चाहिए व सामान चाहिए। मुख्यतः पुजारी लोग अमर जब जाते हैं तो विशेष आचमन करने के बाद जिन लोग घर में भी है ये विधि को पालन कर सकते हैं। तो विशेष आचमन करने के बाद पांच प्रकार जो फल है उसको अमान्या किया जाता है, उसको काटना मतलब साधारण फल को निर्देश करता है। एवं मिठाई भी होता है पांच प्रकार का होता है, रसमलाई होता है, रसगुल्ला होता है, संदेश एवं उसमें और खीर भी होता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है। एवं फूल जो कि सुगंधित फूल होना चाहिए और समय अनुसार अभी जैसे बेला का फूल है, गुलाब का फूल हमारे यहाँ सभी समय लगभग मिलता है, वृंदावन में सभी जगह में ये संभव नहीं है। एवं तुलसी, इसको संग्रह करना चाहिए, अब प्लेट में उसको प्रस्तुत किया जाता है। एवं अभिषेक का, उसमें जैसे पादम मार्गम आचमनियम विशेष आचमनियम इसको अभिषेक प्लेट में प्रस्तुत करने के बाद फिर और मंदिर का अंदर व प्रवेश करना चाहिए। उसका बाद फिर आसन शुद्धि मंत्र है, उसके बाद भूत शुद्धि है और द्रव्य शुद्धि है। द्रव्य शुद्धि का बाद हमारा जो षोडशोपचार का पूजा है, प्रथम अस्तु गुरु पूजम तथा शैव ममर्चनम, पहले गुरु महाराज को पूजा करना चाहिए, उसका बाद भगवान को षोडशोपचार में पूजा करना चाहिए। पूजा करना बाद भगवान को विभिन्न आभरण व वस्त्र परिधान करा के उपवीत प्रदान करके उसका भी हर जो पद्म है उसका भी और मुद्रा होता है, जैसे षोडश उपचार है उसमें षोडश प्रकार का व 16 प्रकार का और उसमें मुद्रा है, ऐसे अर्चन पद्धति में 40 प्रकार का दिया हुआ है, लेकिन सभी के लिए सब संभव नहीं है। तो खास करके अंकुश मुद्रा, बीजाकार मुद्रा, धैलनी मुद्रा और गालिनी मुद्रा, चक्र मुद्रा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सभी मुद्रा कोई सीख सकते तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे भगवान को ये षोडश उपचार में पूजा किया जाता है। और जो द्रव्य है ये सब और ताजा होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। जैसे शास्त्र में वर्णन है कि फूल तुलसी बासी नहीं होता है, छोड़ दिए तुलसी आ रहा फूल को आप छोड़ दीजिए, लेकिन और दूसरा जो सामान है उसको ताजा होना चाहिए और बहुत सफा सुथरा होना चाहिए। इसी हिसाब से आप षोडश उपचार पूजा करके भगवान को भोग अर्पण किए, ये प्रातःकालीन का है, लेकिन उसका बाहर फिर 8 बजे है, फिर 11 बजे का है, फिर अपराह्नकालीन 3:30 बजे को भगवान को जागरण किया जाता है, फिर संध्याकालीन में आरती का पहले 6:30 बजे भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। एवं आरती व शयन आरती उस समय भगवान को अर्पण किया जाता है। शयन आरती के बाद भगवान को फिर शयन का जो श्रृंगार करने के बाद भगवान को राबड़ी रखा जाता है, स्वादिष्ट पदार्थ, क्योंकि ब्रज में वात्सल्य भाव का प्रधान है, इसे रस का अंदर वह माधुर्य भाव का सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन ब्रज में जो बाल उपासक बाल गोपाल को वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं, खास करके जसोदा माता खीर व राबड़ी रख देते हैं, क्योंकि लल्ला को कभी भूख ना लग जाए, यदि उठ जाएगा तो कम से कम राबड़ी व खीर खा के फिर चुप रहेगा, नहीं तो फिर नटखट है फिर परेशान करेगा। इसी भाव से मंदिर में आप लोग कुछ भक्तों को जानकारी होगा कि हिसाब कर लीजिए, सुबह मंगल आरती में भोग लगता है और पूजा करने के बाद 8 बजे, फिर 11 बजे, 6:30 बजे और 8 बजे फिर रात को लगता है, एक बार आपने लगता है, तो हिसाब कर लीजिए लगभग 6 बजे 6 बार 7 बार हो जाता है। तो ऐसे ही अष्टकालीन लीला चलता रहता है। लेकिन अष्टकालीन लीला चिंतन करने के लिए अपना को इतना शुद्धि एवं वो योग्यता होना चाहिए। जैसे आप सुने हैं कि मानसिक सेवा में भी आर भगवान को अर्चन किया जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये भी बतलाए कि ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करिवे। लेकिन प्रभुपाद ने इसी श्लोक का तात्पर्य में बताया कि धनाढ्य गृहस्थ को बड़ा भव्य मंदिर बना करके इस षोडश उपचार में बहुत धाट बाट से भगवान को सेवा करना चाहिए। और क्या ना, जो उत्सव वगैरह है उसको भी धाट बाट से और भगवान का उद्देश्य और मना जाना चाहिए। और समय उपयोगी व ऋतु का उपयोगी भगवान को फल व फूल और जो भी सामग्री भगवान के उपयोगी है उसको अर्पण करना चाहिए। और ये नहीं करते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये भगवान को धोखा देते हैं, वह कंजूस है व अड़सी है। खास करके प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे जो मंदिर का जो पूजा एक खास कर गृहस्थ भक्त लोग ही करना चाहिए, और जो वानप्रस्थ है और ब्रह्मचारी या सन्यासी है उनको बाहर में जाकर प्रचार करना चाहिए, और वानप्रस्थ लोगों को सन्यास के लिए तैयार करना चाहिए। इसमें एक प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ तो ब्रह्मचारी लोग भी बहुत सारे सेवा करते हैं। हाँ, सेवा करते हैं, उसके साथ साथ प्रचार भी करते हैं। और जिन लोग वानप्रस्थी है उन अवश्य ही कुछ भक्त इस साल हमारे सन्यास के लिए भी प्रस्तुति लिए हैं। खास करके अर्चन का जो यहाँ पर वर्णन है, इसका विशेषता है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसी युग के लिए और भी शास्त्र का सिद्धांत अनुसार हम सुने हैं कि कृते धायते विष्णु त्रितया जजते मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौत हरि कीर्तना। यहाँ पर जो श्लोक का अनुसार भगवान का नाम का प्राधान्यता दिया गया है, उसी समय द्वापर में द्वापर परिचर्यायाम, क्योंकि जुग का उपयोगी जो हो 8,96,000 जुग का परिमायु था एवं 1,000 लगभग और इंसान जिंदा रहते थे, तो उसमें द्रव्य भी शुद्ध था एवं ब्राह्मण भी सत ब्राह्मण थे एवं स्थान भी ठीक था एवं 24 घंटा भगवान का परिचर्या होता था। अभी अर्चन का प्राधान्य गोस्वामी लोग को भी दिया है एवं अर्चन लोग उन्होंने भी अर्चन किए थे, लेकिन उसी उन लोग का जो अर्चन हमारे अर्चन में अंतर है। इसीलिए स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिक हरि भक्ति उत्पात कड़वते। इसीलिए ये पंचरात्रि विधि को हमको विधि विधान सहकार पालन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, उत्पादित व कल्पते उपद्रव सृष्टि होगा। क्योंकि जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्हें 12 सालग्राम का अर्चन करते थे एवं प्रभुपाद में उल्लेख किए हैं कि अब वो पूजा का सीखना है तो अर्चन का तो राधारमण गोस्वामी लोग से सीख लीजिए। अवश्य प्रभुपाद जी ने उन्होंने वहां से सीखे थे, इसलिए अर्चन पद्धति का और उसी हिसाब से प्रस्तुत किए हैं। और विशेष भाव का बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे कोई गोस्वामी सालग्राम को व गोपाल को अपना थैला में, आजकल जैसे जब बैग बा बीट बैग नहीं था, गुमुखी था एवं थैला जैसे साधु लोग पकड़ते हैं व व्यवहार करते हैं उसमें लेके चलते थे। जैसे लोकनाथ गोस्वामी किशोरी कुंड से राधा विनोद को प्राप्त हुए थे, उन्होंने इतना थाट बाट से 1600 उपचार से पूजा नहीं करते थे। क्यों ना, उनको इतना और समय का इतना सामान भी नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद उल्लेख करते हैं ये सन्यासी है, वो तो विरक्त है एवं उनका कई पर चिरस्थाई परमानेंट कई आश्रम नहीं है, प्रचार करते रहते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा उपचार का सामान जुटाना और इतना समय को उसे लगाना उसको समय नहीं, क्योंकि प्रचार मुख्यतः है उनका आश्रम का नियम है, तो उन्होंने क्या करेंगे ना मानस में पूजा करेंगे। इसलिए आप राधारण अमर महाराज आपको सुनाए कि प्रतिष्ठान का जो ब्राह्मण है उन्होंने कैसे मानस में पूजा किए थे और चैतन्य महाप्रभु इसको प्राधान्यता दी है। लेकिन हमारे द्रव्य जो भी है वह वस्तु पास में निकट में ब्रह्मचारी हो वह गृहस्थ हो कि वानप्रस्थ सन्यासी हो, अब मंदिर में भी जो सारे सामान हमारे पास है मौजूद है तो हम उसे कंजूस क्यों करें, अरे कंजूस करने से ये अपराध का कारण बनेगा और अपराध भंजन के लिए भी बहुत सारे मंत्र दिए हैं, खास करके बराह पुराण में बतलाया गया कि उसको गीता का एक अध्याय पाठ करना चाहिए और स्कंद पुराण में है कि अपराध से बचने के लिए तुलसी का बीज रोपण करना चाहिए और अभी है कि कोई स्तब सूत्र पढ़ना चाहिए, खास कर अपना इष्टदेव जैसे कोई गौर निताई की पूजा कर रहा है तो गौर निताई का स्तब सूत्र है एवं अष्टकम है उसको पढ़ना चाहिए। जो कृष्ण बलराम का पुजारी है कृष्ण बलराम को ऐसे नहीं के लिए पुजारी लोग ही पढ़ेंगे, जो हम गृहस्थ भक्त है वह बाहर में जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं जैसे चित्रपट है कि वह और धातु विग्रह भी है उसको वहां सरल विधि से वह पंचराधि की विधि से और जिन्होंने भक्ति का अग्रगति कर चुके हैं उन्होंने गुस्सा में लोग का जो भाव का अनुसार पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भाव से ही राधा रामन जी प्रकट हुए थे, उन्होंने सूचित किया कि सारे जो वस्त्र हो सबको तो मिल गया है और हमारे जो भगवान है इनका हाथ पर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन गोस्वामी जी को मालूम था कि भगवान का नारायण रूप में उन्होंने सालग्राम रूप में है लेकिन उनका अवयव तो है, लेकिन ये भाव को प्रकट करने के लिए सालग्राम स्वयं और नारायण बा गोपाल है शंकर सण है कुर्म है ये भाव को वो प्रकट करने के लिए उन्होंने भाव व्यक्त किया ना हमारे यदि विग्रह का अवयव होता हाथ होता और पैर होता तो उसको पहनने का सुविधा होता कि मैं वस्त्र मांग लेता पोशाक मांग लेता हूं, ये सोच के उन्होंने तब विश्राम किए। फिर सुबह जब वो नहाने के लिए यमुना गए यमुना से जब आके देखे कि राधारमण स्वयं विराजमान है, राधारमण की उसमें कई पंचरात्रि विधि का जहां प्राधान्य दिया भाव का प्राधान्य दिया गया है, लेकिन ये भाव को प्राप्त करने के लिए हमको जरूरी है कि पंचरात्रि विधि का पालन करने के लिए, क्योंकि ये विधि मार्ग एवं राग मार्ग है, जब हम विधि मार्ग को कड़ा से पालन करते हैं तो कुछ दिन के बाद हम राग मार्ग में प्रवेश करते हैं, नहीं तो राग मार्ग में पहले से हम चालू कर देते हैं तो हमको सहजिया जो है आप परिभाषा में सहजिया अति बड़ी जो गौरांग नागरी बारह प्रकार अपर संप्रदाय है उससे हम गिना जाएंगे। इसीलिए ये अर्चन का खाली नारद पंचरात्र में ही नहीं, आप लोग सुने हैं महाभारत में जब संधिदूत बन के भगवान और दुर्योधन का पास भी आए एवं राजसभा में सभी लोग उपस्थित थे और भगवान कृष्ण भी वहां विराजमान थे, लेकिन उनका अर्चन अर्चन किसको किया जाएगा के सिद्धांत में सार गर्व निकला कि भगवान को ही किया जाएगा, तो भगवान को जब वो अग्र पूजा अर्चन किया गया है तो वहां पर जैसे शिष्यवाद जैसे विदेशी उपस्थित हैं और उन्होंने भगवान का निंदा की और निंदा का परिणाम भी उनको मिल गया, तो अभी भी ऐसे ही शिशुपाल जैसे दंतपत्र जरासंध कंस जैसे विग्रह को पूजा करने का निंदा करते हैं, अरे बोलते अरे विग्रह क्या है ये पैसा था अरे पत्थर खरीद के लेके आओ सिंगर कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त शुद्ध भक्त है उन्होंने कभी भी भगवान को पत्थर वा और धातु मानते नहीं, क्योंकि भगवान को आचार्य का द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। जब भगवान को प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का द्वारा आह्वान किया गया है तो वो पत्थर कहाँ रहा? आज जिन लोग पत्थर मानते हैं ये सबसे उन लोग पाषंडी बा अपराध करते हैं, उन लोग का सदगति नहीं होगा, उनका क्या गति होगा? नरक गति होगा। जैसे शास्त्र में वर्णन है कई तीर्थ का जो पानी है उसको हम साधारण पानी का साथ वर्णन करते हैं, जैसे सप्त नदी है पवित्र नदी है उसको साधारण पानी यदि हम मानते हैं पास साधारण जल मानते हैं तो हमारे अपराध होता है, और विग्रह को यदि साधारण धातु का पात्र मानते हैं फिर ये भी हमको अपराध होता है। और क्या है ना, जब गुरु को हम साधारण मनुष्य ज्ञान में देखते हैं, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है सर्वदैवमय गुरु, सभी प्रकार जितना भी हमारा देवता है उनका अंदर प्रविष्ट है, एवं भगवान ये भी बताते हैं कि ये जगत में मैं गुरु रूप में और पथ प्रदर्शन के लिए अभिचरण करता हूँ, हमारे ही प्रतिनिधि है। इसीलिए हमको विग्रह अर्चन व पंचरात्रि विधि को पालन करने के पहले हमको क्या करना चाहिए ना, गुरुपादाश्रय करना चाहिए, उसका बाद दीक्षा शिक्षाधि शिक्षण, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, हम सभी लोग ये जगत में माता पिता संस्पर्श से हम आ रहा जन्म हुए हैं, इसलिए शास्त्र उसको नीति शिक्षा और भी शास्त्र में वर्णन है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार भवेत द्विज वेद पाठत भवेत विप्र ब्रह्म जाना दीधि ब्राह्मण। जब हम कई विग्रह अर्चन कर रहे बा पूजा कर रहा है भाव से कर रहा है बा विधि मार्ग से कर रहा है, लेकिन शास्त्र निर्देश देते हैं कि पहले गुरुपादाश्रय होना चाहिए, और गुरुपादाश्रय किन से होना चाहिए ना, सदगुरु से और सत संप्रदाय से होना चाहिए। नहीं तो शास्त्र प्रमाण करता है हर व्यक्ति विलास कि संप्रदाय बिना मंत्र से भी पड़ा माता। इसमें एक प्रश्न उठता है कि जिन लोग हरिनाम करते हैं जिनको धर्म पालन करते हैं तो उनका गति क्या हुआ? शास्त्र में वर्णन है कि जुगा धर्म पालन करते हैं इसीलिए उनको पहले जो दोबारा जन्म लेंगे उसको फिर एक चांस दिया जाएगा कि उसमें सदगुरु उनको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे ये पंचरात्रि विधि अनुसार दीक्षा नहीं हो रहा है वह गुरु का पादाश्रय नहीं हो रहा है तो भक्ति जीवन में उन्नति व अर्चन करने का निषेध है, क्योंकि हम शूद्र है। लेकिन हम दम्भ का अनुसार यदि भगवान का विग्रह का अर्चन करते हैं तो अर्चन पद्धति को हम अपनाते हैं तो शास्त्र का अनुसार क्या है ना, स नरक ही नरक यंत्रणा भोगना पड़ेगा, क्योंकि भागवतम में सताई से नरक का वर्णन है पंचम स्कंद में, लेकिन अन्यान्य पुराण में जैसे कि चौरासी नरक का वर्णन है, कौन से पाप करने से कौन से अपराध करने से हमको कौन से नरक जाना पड़ेगा, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक उसी नरक में, एक नरक से दूसरा तीसरा ऐसे जाएगा। लेकिन विष्णु रहस्य में हमारे भक्ति रसामृत में प्रभुपाद जी ने उल्लेख करते हैं कि श्रद्धा सहकार भगवान विष्णु में राधा कृष्ण शालग्राम या जगन्नाथ राम अन्यान्य जो विग्रह को भगवान का सेवा करते हैं उनका जीवन तक कालातिपात आनंद में होता है और अंतिम समय में ये भगवत धाम को लौट जाएंगे। और उससे क्या होगा ना, हम नित्य लीला में भगवान का नित्य सेवा में रहेंगे। इसीलिए हमको जो अब अभिगमन का बाद जो मैं बताया था कि भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, उसमें जो उपादान का तो बताया, उसमें और था जोग है। जोग जो है हमको ये सोचना है कि अर्चन करने का पहले कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है ना, आत्मा है। हमारे स्वरूप क्या है ना जीवेर स्वरूप है नित्य किसनर दास। लेकिन जैसे समाज में देखा जाता है और हम लोग सोने भी हैं, जैसे गोपी भाव विधि मार्ग वहां पालन ना किए नहीं, संस्कार भी हुआ नहीं और सीधे हम गोपी भाव को ग्रहण कर लिए क्योंकि पोषाक पत्र मिलता है। लेकिन उसको शास्त्र में निंदा किया गया कि गोपी भाव मतलब है कि भगवान को सर्वांतकरण व समस्त इंद्र देकर भगवान को सेवा करना चाहिए। इसी के ऐसा सेवन भक्तिर उत्तम भक्ति है। और नहीं तो क्या है ना, अपर संप्रदाय से नरक का रास्ता हम तैयारी करेंगे। इसलिए हमको ये भूत औषधि भी जरूरी है। यही नहीं कि पुजारी लोग यही करेंगे, जो कि श्लोक है नाय बर्णी न च नरपति नाय विप्र न बनस्त जतिर्वा किंतु निखिड़ परमानंद गोपी भर्तु पद कमल दास दासानु दास। ये जो भूत औषधि है ये है जोग में आता है और है जबकि इज्जा उसमें अर्चन पद्धति में लिखा है कि अपना रुचि अनुसार इष्ट देव का पूजा करना चाहिए। कोई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, कोई शालिग्राम, कोई गिरिराज महाराज को। जैसे गिरिराज महाराज को अर्चन करने का दो तरीका से होता है, एक तो भगवान का तरफ से भी और एक है भक्त भाव में भी। लेकिन शास्त्र का अनुसार आचार्य लोग दो भाव को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही रुचि अनुसार आप कोई भी विग्रह को अर्चन कर सकते हैं। इजा उसका बाद है कि श्रद्धा है, मतलब भक्ति ग्रंथ अध्ययन करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु भागवतम एवं श्रीमद् भागवत गीता जैसे अन्यान्य गोस्वामी लोग का है, गोविंद लीलामृत जैसे अष्टकालीन लीला का और कृष्णदास कविराज ने प्रणयन किए हैं, जो उच्चतर रस को आसाधन करने के लिए इसको अध्ययन हम कर सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हमारा स्थिति कहां पर है, नहीं हम और भाव में भाव राज्य में प्रवेश किए नहीं है लेकिन विधि निषेध को भी पालन किए नहीं, उसमें हम और राग मार्ग को हम अपना ले हैं। तो इसमें फिर क्या होगा ना, उत्पात ही वे कड़बते अब भक्ति जीवन से हमारे पतन हो जाएगा। पतन होने से क्या होगा ना, फिर ये पुनरपि जननम जो चक्र है उसमें आएगा। उसका उदाहरण किया है ना, भरत महाराज ने उन्होंने भाव स्तर को पहुंच गए थे, भाव का बात प्रेम है, लेकिन भौतिक आसक्ति का कारण, हिरण का शरीर में आसक्ति का कारण, क्योंकि इसे पता चलता है कि हम भाव स्तर को जाने पर भी ये पतन का कारण होता है। लेकिन अर्चन को हम अपनाने से विधि निषेध को यदि कट्टर से पालन करें अपराध से मुक्त हो जाएंगे, तब क्या होगा है ना, पुनर्बार जैसे भरत महाराज ने हिरण शरीर में भी फिर आश्रम में रहे एवं प्रत्यावर्तन किए भगवत धाम को। लेकिन जानते हुए हम अपराध को आरोप लगना ठीक नहीं है, इसलिए बराह पुराण में, स्कंद पुराण में, भक्ति रसामृत सिंधु में इसको आप देख सकते हैं। जैसे सबरी ने कोई आर 16 उपाचार से उन्होंने पूजा नहीं किया करते थे, वह मानस में उन्होंने किया करते थे, क्योंकि मतंग मुनि ने अपना गुरु महाराज ने बता दिए कि रामचंद्र भगवान इसी रास्ता से आएंगे, तो उन्होंने मानस में ही पूजा किया करते थे भगवान का। हर दिन वो रास्ता बहार देना एवं फूल से आहार बिछा करके, बहुत कोमल का फूल रास्ते में बिछा के भगवान का रास्ता को हर दिन जो के रहते थे। लेकिन भगवान ये भक्त का भाव समझ गए और एक दिन वनवास का बहाना बना करके भगवान उनका कुटिया में पधारे। ये तो हर दिन ही उन्होंने मानस में ध्यान करते थे और रास्ता का उन्होंने और सजाते थे, लेकिन भगवान इतना करुणामय व कृपामय है। इतना नहीं, जैसे पंचरात्रि विधि का अनुसार फल को धोके कोई कीड़ा है कि वहां पर, तो इसको देखा देख के उसको पुका हुआ जो कीड़ा वाला फल तो लगाना ही शास्त्र में होना हुआ है, तो बहुत थाट बाट के बाद सुंदर से परिष्कार परिच्छन्न करके अमन्या करके भगवान को भोग लगा जाता है विधि मार्ग से। लेकिन सबरी ने कोई विधि का पालन थोड़ी किए, उन्होंने तो चाक चाक के दिए और भगवान ने बहुत प्रेम से लिए। और भगवान को दर्शन करते हुए भगवत धाम को लौट गए, क्योंकि अपना जो गुरु महाराज का बाद में वाक्य से उन्होंने दृढ़ थे। हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते थे करिया आरना करिया मने आशा। मतंग मुनि का जो बात का शास्त्र का जो सिद्धांत तो उन्होंने बता दिए थे मानस में कैसे करना है, पूजा करना कैसे भगवान को और आवाहन करना है, ये बता दिए थे उन्होंने, उसको कड़ा से पालन किए थे। लेकिन अंतिम समय भगवान ने झूठा बेर का फल खा के भगवान उसको सदगति दिए। इसीलिए ये अर्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुविधा अनुसार कोई भी आश्रम में कहीं भी वर्ण में कोई भी स्थान में हम रह सकते हैं, लेकिन ये अर्चन जो है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि उसका ज्वलंत उदाहरण है पृथु महाराज ने। तो शास्त्रों का अनुसार उन्होंने सौ अश्वमेध यज्ञ भी किए एवं सौ अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने, जो कि 33 करोड़ देवताओं का राजा है, उन्होंने फिर विघ्न डाले। एक बार दो बार उनको वो दंड देने के लिए भी राजा प्रस्तुत थे एवं उनका जो पुत्र भी प्रस्तुत थे, लेकिन ऋषि ने मना किया। क्यों? कि आप अभी यज्ञ में दीक्षित है, जगह में जब दिखे जाने के बाद आपको जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो दूसरा युग में अभी भी हम जब यज्ञ करते हैं, जैसे माता लोग भी रोसाई करते हैं, उसमें बहुत सारे कीड़ा मकड़ा को हम भून देते आग से, यज्ञ में भी उसे उनको हम डाल देते आग में, लेकिन ये तो अपराध होती है। इसीलिए उसी समय जो कर्मकांडी ब्राह्मण भी है एवं हमारे जो वैष्णव पद्धति में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो संस्कार दीपिका व अन्य जो ग्रंथ उन्होंने प्रणयन किया है, जब अंतिम समय में वैष्णव होम जब होता है कि क्षमा प्रार्थना किया जाता है, हमारे जो पुजारी लोग हैं जो भगवान को शरण देने का बाद तो मंत्र है और क्रिया है ना, ये मंत्र को पाठ करते हैं। ये नहीं कि पुजारी लोग पाठ करेंगे, जो भगवान को वो आश्रम में बा गृहस्थ आश्रम में कोई है उन लोग भी है मंत्र को उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्धता बहुत जरूरी है। इसीलिए भूत शुद्धि आत्म शुद्धि का भी जरूरी है, क्योंकि नाम जप करने से हमारे आत्मशुद्धि, जैसे चैतन्य महाप्रभु बतलाए क्या, चेत दर्पण मार्जनम भव महाजावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोध जीवनम आनंदाम दिवर्धनम प्रतिपद पुण्यामृत असाधनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। लेकिन ये 64 अंग में जो वर्णन है उसमें हमारे कृष्णदास कविराज ने और भी शास्त्र में वर्णन है कि 5 अंग को जो मुख्य है 5 अंग को हम पालन कर सकते हैं, और 5 अंगों में अल्प संघ से हमारे कृष्ण प्रेम उपजे आरो प्रपुटित होगा। और कोई कोई जैसे शास्त्र का अनुसार जो नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति का 9 अंग पालन किए थे, जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण 7 दिन जावत उन्होंने बहुत कड़े से पालन किए, श्रवणम कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी किए, स्मरणम पाद सेवनम जो आप काल सुने थे, श्रवण क्यों किए थे ना, प्रहलाद महाराज ने किए थे। आप प्रहलाद महाराज को ऐसे कोई मंदिर बना देकर षोडश उपचार में पूजा करने का कोई विधि नहीं था, पर उन्होंने श्रवण करने का इतना सुव्यवस्था नहीं है, अम्मा लू का जैसे प्रभुपाद जी ने व्यवस्था करके गए। उनको तो जब प्रश्न पूछे, जब ये श्लोक बतलाए, तब से उनको आहार दंड देना चालू किए देते, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक भगवान के ऊपर दृढ़ता रखे एवं भगवान को उन्होंने दर्शन भी कर रहे थे। अभी जैसे नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, अब उसका लीला आप सुनेंगे। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी अनादिकाल से लेकर पाद सेवन कर रहा है, अब करते भी रहते हैं, अब करेंगे भी। पाद अर्चनम जो कि पृथु महाराज ने किए, एवं हर मंदिर में अर्चन का व्यवस्था है। एक बार जब देवकी नंदन प्रभु यहाँ प्रेसिडेंट थे, तो हर पुजारी मंगल आरती नहीं आते हैं, उन्होंने कंप्लेन किए थे, तो उनको जानकारी नहीं था कि सुबह जो व्रत में बताया था फल अमाना करना चाहिए 5 प्रकार का, एवं रसगुल्ला रसमलाई संदेश खीर एवं अभिषेक प्लेट का आरव प्रस्तुत करना, क्योंकि दूसरा मंदिर में अभी भी इस सालग्राम को आरोप मुख्य जो छोटा बिगड़ा उनको अभिषेक करके और थोड़ा से फल भोग लगा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रभुपाद जी के लिए गौर निताई का अलग, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एवं प्रभुपाद जी का भी अलग होता है, एवं किशन बलराम का अलग, सालग्राम का अलग, एवं राधा श्याम सुंदर का अलग। तब जब देवकी नंदन प्रभु पूछे कि सब पुजारी आना चाहिए, तो पुजारी को बताइए ऐसे फल सब कटा जाता है इसे, तो उनको बोला नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे पुजारी मीटिंग में हेड पुजारी समेत आलोचना हुआ कि जब प्रभुपाद का समय से प्रस्तुत है 3rd बार में सेवा, अभी हम बंद नहीं कर सकते, तो तब से ये 3rd बार से सेवा हो रहा है। अभी भी हमारे कोई भक्त लोग जानते नहीं कि कब आरती होता है, कितना भोग लगता है, कैसे, लेकिन हमारे अर्चन पद्धति में लिखा हुआ है, और जिन लोग को जानकारी नहीं है वह जानना चाहते हैं पुजारी लोग का साथ संपर्क रख सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे हैं, कई गृहस्थ यदि ये 3rd बार से मंदिर बना के भव्य मंदिर बना के वह 3rd बार से पूजा नहीं करते हैं, कम से कम पूजा व अर्चन दर्शन करना चाहिए, ये सुलभ है, और नहीं तो यदि ये संभव नहीं है तो कम से कम भगवान का श्रृंगार आरती का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान को ये 1600 उपचार पूजा आने का बाद भगवान को बहुत बढ़िया से श्रृंगार किया जाता है। ऐसे नहीं कि हम 7-15 में आए हैं और 8 टन से देखने उपस्थित देने के लिए वह हाजिरी देने के लिए आया, भगवान को अच्छा से दर्शन नहीं किया और बाहर आदमी जैसे यहाँ से यहाँ आंगुल लगा देके चले जाते हैं। इधर दंडवत प्रणाम है, ये अर्चन का एक अंग है, परिक्रमा करना, चरणामृत ग्रहण करना एवं तुलसी में और जल प्रदान करना, ये जो मंत्र उच्चारण करना, रूपा जी ये भागवत में वर्णन किए, अर्चन में जो टिप्पणी लिखा है प्रभुपाद जी ने उसमें ये बताया कि हर मंत्र में नमः उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ये परिपूर्णता होता है। जैसे भगवत गीता में है कि जब अंत सत हम उच्चारण करते हैं तो जो बाद बाकी रह जाता है उसको परिपूर्णता होता है। ऐसे ही ये अर्चन पद्धति को हम जब अपनाते हैं तो उसमें है नाम जप का भी उसमें आता है, क्योंकि जो 5 अंग है उसमें है साधु संग, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन एवं श्रद्धाए विग्रह का अर्चन एवं मथुरा वास। जिन लोग मथुरा मंडल में वास करते हैं तो उनको ये 5 अंग सुलभ है, और 5 अंग का थोड़ा से है पालन करने से
हम उसका फायदा ले सकते हैं एवं लाभान्वित हो सकते हैं। इसीलिए ये अर्चन पद्धति को अपनाना चाहिए एवं ये जो विधि निषेध है, खास करके जो अपराध है, कोई जगह में 32 प्रकार का है, कोई जगह 9 प्रकार का है, कोई जगह में 12 प्रकार का है, लेकिन सभी का पालन करना संभव नहीं है। कम से कम हमारे जो अर्चन पद्धति में जो वृंदावन में रहते हैं भक्त लोग, ये वृंदावन मंदिर में जो हमारे विग्रह का अर्चन होता है, इसी अर्चन दीपिका में जो विधि निषेध दिया हुआ है उसको पालन करना चाहिए। और पालन करने से जैसे प्रथम महाराज ने भगवत धाम को लौट गए, ऐसे ही हम भी लौट जाएंगे। श्रीमद् भागवतम की महाप्रसाद की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद शील प्रभुपाद की आप लोग
Thank you.